के भागवतम क्लास में सभी उपस्थित वैष्णव का स्वागत करते हैं। तो आज के आठवें स्कंद के 22वें अध्याय के 32वें श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक हम ये देखते हैं कि किस तरह पार्श्वभूमि थोड़ा देखेंगे, किस तरह बलि महाराज को वामन देव ने बंदिस्त किया, नागपाशे उन्हें बांधा, और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी आने के बाद तो आगे फिर क्या हुआ। 21 से लेके 32 तक ब्रह्मा जी और बलि महाराज के बीच में क्या वार्ता होती है वो हम थोड़ा देखेंगे। तो 21 से लेके 24 तक ब्रह्मा जी जो जीवों के हितेशी हैं, जीवों के बारे में ध्यान रखते हैं, उन्हें उनकी देखभाल करते हैं, वो जब उन्होंने देखा कि जब नीचे आए उन्होंने देखा कि बलि महाराज को इस तरह नागपाशे बांधा गया है, तो उस वक्त उन्होंने क्या उनके मन में ये विचार के करुणा आ गई बलि महाराज के प्रति। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, कहने पहले तो ब्रह्मा जी नीचे आने के बाद सीधा भगवान से प्रार्थना करने लगे, लेकिन एक है ये इसमें ये देखा जाता है कि बलि ब्रह्मा जी एक एक व्यक्ति ऐसे हैं जो भगवान से डायरेक्ट प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के बाद डायरेक्ट कौन दूसरे आते हैं इस भौतिक दुनिया में, तो देखा जाए तो ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी ऐसे भगवान से डायरेक्ट बात करके बोल सकते हैं, और दूसरा कोई अन्य देवी देवता ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कैसे होता है कि जब ब्रह्मा जी ने ऐसे बलि महाराज के बारे मतलब एक तरह से कह सकते कि सिफारिश की, ब्रह्मा जी ने भगवान के पास जाके सिफारिश की कि आप इसके साथ ऐसे और मत कीजिए ज्यादा, और परेशान मतलब इसे तकलीफ में मत दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले बहुत भुगत चुका है, इसने सब कार्य किए, बहुत तकलीफ उठाई है इसने, इसने अपना जो कुछ भी इसने जीता था इसके पास था इसने सर्वस्व आपको अर्पण कर दिया है, तो इसलिए और इसे कठिनाई नहीं दे। और तो और ये बात है कि सबसे ऊपर बात है कि इसने अपने आप को भी अर्पण कर दिया। तो इस भौतिक दुनिया में देखते हैं लोग सब कुछ दे देंगे, अपना कुछ सब कुछ अपना नियोचर कर देंगे, एक तरह से सब कुछ दे देंगे, देते तो नहीं लेकिन फिर भी सब कुछ दे देंगे एक तरह देख ले जाए तो, लेकिन कोई भी अपने आप को भगवान को अर्पण नहीं करता। यही प्रॉब्लम आज के दुनिया में। तो अभी देखते हैं ये करोना करोना करते रहते हैं, भगवान बोल रहे करोना करोना करोना, तो लेकिन लोगों को समझ भी नहीं आते करोना करोना मत, भगवान बोल रहे भक्ति करोना करोना, अर्पण अपने आप को करोना, लेकिन लोग बीमारी के पीछे करोना करोना करके भाग रहे हैं। तो ये एक बात इसमें है। तो लेकिन जो भक्त रहता है, जो भगवान को शरणागत होता है या होना चाहता है, उसे समझ में आता है तो भगवान करोना करोना भेजा है इनडायरेक्टली, तो क्या करोना है, लेकिन लोग बीमारी वायरस करोना है उसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर हम इसी करोना का भगवान एक तरह से देखा जाए, अगर पॉजिटिवली सोचा जाए तो भगवान ने एक तरह से कृपा की है सब जीवों के ऊपर। जो कहते कि संडे टू संडे पापा कहते थे कि हफ्ते में एक दिन बच्चों से मिलते थे, परिवार से मिलते थे, तो भगवान ने देखो कैसी कृपा की। तो एक साथ सब मिलके एक ही रूम में बंद रहो, नीचे भी मत आओ बाहर भी मत आओ, एक रूम में बंद रहो, लेकिन बंद रह के करना क्या है। तो उस वक्त क्या करना, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान के गुणगान करना चाहिए, परिवार एक साथ मिलके, चाहे पति पत्नी के एक दूसरे से जमे ना जमे, लेकिन जबरदस्ती रहना तो पड़ेगा ही, क्यों बाहर जाएंगे तो कोरोना पकड़ने के बजाय अंदर रह के एक दूसरे के साथ मिलके अगर भक्ति करेंगे हम लोग तो इससे क्या होगा, तो हमारे एक दूसरे के रिलेशन संबंध समझ जाएंगे, सुधर जाएंगे, तो एक दूसरे को मदद करेंगे, तो एक दूसरे की देखभाल करेंगे, इससे क्या होगा कि हमारा रिलेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर टीवी के सामने बैठेंगे, व्हाट्सएप खोल के बैठेंगे, वो कोरोना के बारे में सोचते रहेंगे और दिमाग खराब होगा। जो होना है वो निश्चित तो होने वाला ही है, हमारी तरफ से हम कितना भी प्रयत्न करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं कि सब छोड़ के बैठ जाना चाहिए, प्रयत्न तो करना चाहिए, जो बताया गया है उसी तरह करना चाहिए, जो गवर्नमेंट बता रही सरकार बताती है उस तरह करना चाहिए हमें, क्योंकि उससे हमारे लिए ही है। इसी तरह शास्त्र हमें क्या बताते हैं कि हमें भक्ति में प्रगति किस तरह करना चाहिए, एक दूसरे से मिलके कैसे रहना चाहिए, ये हमें शास्त्र का सुनना चाहिए। जैसे अभी हम कुछ हद तक लोग सरकार का पालन कर रहे हैं, घर में रुक रहे हैं, उसी तरह हमें शास्त्र क्या बताते हैं कि किस तरह हमें कार्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस तरह अगर हम करेंगे तो भक्ति में भी हम प्रगति कर सकते हैं। तो ये एक मौका है कि हम घर में बैठकर तो हम भक्तों साथ में, अगर बाकी लोग तो भक्तों का संग में मिलेगा, लेकिन घर में बैठ के भक्तों का माहौल, मंदिर का माहौल बनाकर अगर हम रहेंगे भागवत पे चर्चा करेंगे, जो प्रवचन सुनेंगे, या जो तकलीफें एक दूसरे की एक दूसरे के बांट के उसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे, तो यही हमारी भक्ति में प्रगति हो सकती है। तो इसीलिए भगवान की एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये कोरोना बीमारी डाल के कृपा ही दी है ताकि हम एक तरह के एक दूसरे के रिलेशन बढ़े। तो ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि बलि महाराज ने तो सब कुछ अर्पण कर दिया है, तो आप और इसे परेशान मत कीजिए। तो आप तो उन लोगों को भी वैकुंठ लोक में जगह देते हैं जो बिना द्वेष के प्रेम से आपको पत्र पुष्प अर्पण करते, लेकिन बलि महाराज के साथ आप इतना कीजिए मत और इन्हें तक और इतने परेशानी में डालिए मत, ताकि इससे, क्योंकि देखा जाता है कि भगवान की कृपा, अभी कोई लोग सोचेंगे कि बलि महाराज ने अपना सब धन दौलत तीनों लोग दे दिए, ऊपर से अपने आप को भी दे, फिर भगवान उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्हें इतनी परेशानी में तकलीफ में क्यों डाल रहे हैं, सांप से सर्व इस वर्ष से बांध दिया, सब कुछ कर रहे, क्यों कर रहे इतना? क्योंकि एक तरह से देखा जाए कि भगवान किस लोगों के साथ ऐसा करते हैं वो पहले हमने समझना चाहिए। हमें हमेशा कोई भी हमारे जीवन में तकलीफ परेशानी होती तो पॉजिटिवली लेना चाहिए, लेकिन हम बद्ध जीव होने के कारण, साधक होने के, हम क्या सोचते हैं, नेगेटिवली लेते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जो हमारे जीवन में तकलीफ है अगर पॉजिटिवली लेंगे तो जो भी कुछ भी हो रहा है वो हमारे लिए अच्छा ही हो रहा है। बलि महाराज के साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो प्रहलाद महाराज के वंशज में थे, और भगवान ने नरसिंहदेव ने कहा था कि तुम्हारे वंशज में जो भी कुछ होगा मैं उसकी देखभाल करूंगा, तो यहां भगवान ने अपना वचन निभाया। और दूसरी बात यह है कि बलि महाराज ने सहनशीलता दिखाई अपनी, उन्होंने पूरा समर्पण किया अपने आप को। तो कुछ ऐसे देखेंगे कि जैसे लोग हैं, भक्त लोग हैं, शरणागत होते हैं, लेकिन पूरा सहनशील नहीं रहते, वो उनमें कुछ तो कमियां रहती है। तो हमारे जैसे हमारे उदाहरण में हम लोग देख लें तो किस तरह रहता है, हमारे जीवन में कुछ आता है तो हम किस तरह कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बलि महाराज ने सब कुछ लेने के बाद भी उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया कि मैं इतना जीता, मेरी मेहनत से मैंने सब जीता है, तो आप मेरे से कैसे छीन सकते हैं। बलि महाराज ने कुछ कंप्लेन नहीं किया, उल्टा उन्होंने अपने आप को अर्पण कर दिया। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि इन्हें और कठिनाई में, परेशानी में मत डालिए, इन्हें आप छोड़ दीजिए। तो इससे क्या होगा कि इससे भी थोड़ा आपकी दया कृपा मिल जाएगी। तो एक तरह से देखा तो बलि भगवान वामन देव ने उन पर कृपा कर दी थी, लेकिन और दूसरा आगे कहते हैं कि भाई, इस ब्रह्मा जी की इस तरह कहने के बाद फिर बाद में वामन देव कहते हैं, वामन देव कहते हैं जो मंद बुद्धि वाले लोग रहते हैं, जो मूर्ख रहते हैं, जो ऐश्वर्य, जिनके पास ऐश्वर्य रहते हैं, सुंदरता रहती है, सब कुछ रहता है, मतलब इस दुनिया में जो चाहता है व्यक्ति उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है, भगवान की सत्ता को मानता नहीं है, उनकी अवहेलना करता है, उन पर दोष डालता है। इतना सब कुछ रहने के बाद भी वो कहते ना, मेरा हाथ जगन्नाथ, मैं जो करता मेरे बलबूते पे करता हूं, मैंने कमाया, भगवान में इसमें क्या है, भगवान के इसमें। तो भगवान क्या, कैसे उन पर भगवान किस तरह कृपा करते, उनका सारा ऐश्वर्य छीन लेते हैं, सब छीनने के बाद उन्हें पूरा कंगाल कर देते हैं। जो कहते हैं ना, जब तक व्यक्ति को ठोकर ना मिले, ठोकर ना लगे, वो सुधरता नहीं है। इसी तरह भगवान ऐसे लोगों को जो मूर्ख रहते हैं, मंद बुद्धि रहते हैं, सब कुछ रहने के बाद भी भगवान का आलोचना करते हैं, सब ये करते हैं, ऐसे लोगों की भगवान उन पर कृपा कैसे करते हैं, उनका सब ऐश्वर्य जो कुछ भी उनके है उनका छीन लेते हैं। तो इसी तरह उन पर कृपा करते हैं। और जो लोग सकाम कर्मों के कारण कुछ उनको अगर बहुत ऐसा मनुष्य शरीर मिल जाता है जो बहुत दुर्लभ है, ऐसा शरीर मिलने के बाद भी तो लोग उस शरीर का फायदा नहीं उठाते। जैसे कि ये देखा क्या, जो मन बुद्धि लोग ऐसा, उनको मनुष्य शरीर मिल गया, सब तो कमा लिया, लेकिन उस शरीर का फायदा उठाएंगे कैसे, क्या अगर उस शरीर को भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगाएंगे तभी वो शरीर का फायदा होगा। ये शरीर 84 लाख योनियां घूमने के बाद ये शरीर मिलता है। अगर इस शरीर को अगर हम भक्ति में, भगवान की सेवा में लगाएंगे नहीं तो फिर ये शरीर व्यर्थ है। इसके लिए तो फिर भगवान आगे बताते हैं, ये सब भगवान और ब्रह्मा जी के बीच में वार्तालाप चल रही है। तो उस वक्त फिर भगवान कहते हैं, फिर आगे कहते हैं, जो लोग उच्च पद पाए, वही उच्च पद पाए, जन्म उच्च कुल में जन्म हुआ है, या फिर जिनके पास संसार का ऐश्वर्य, सुंदरता, उच्च कुल में जन्म लेना, फिर बाद में सब कुछ ऐश्वर्य जो एक व्यक्ति को चाहिए, मतलब जो चाहता है दुनिया में, वो सब होने के बाद भी अगर वो घमंडी नहीं हुआ, भगवान की अधीनता को समझता है, पालता है, तो उस वक्त समझना चाहिए ऐसे व्यक्ति की भगवान के ऊपर, भगवान की ऐसे व्यक्ति के ऊपर कृपा कैसे, मतलब उससे वो छीनते नहीं, उनके पास ही रहता है वो ऐश्वर्य, उनके पास ही रहता है, तो ये ऐश्वर्य जो भगवान के अधीनता हो जाते हैं तो भगवान उससे कुछ छीनते नहीं, उल्टा उसकी रक्षा करते हैं। और दूसरी तरफ क्या है, जो घमंडी रहते हैं, मूर्ख रहते हैं, मंद बुद्धि वाले रहते हैं, अपने आप को सब कुछ मानते हैं, भगवान उनका कृपा कैसे करते हैं, उनसे छीन कर, लेकिन इन पर कृपा कैसे करते हैं, उनसे उनकी रक्षा, जो भी उनके पास है उनकी रक्षा करके। तो इसी तरह उच्च कैश और शुद्ध भक्त जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, उनके पास ये ऐश्वर्य होने के बाद भी वो उससे विचलित नहीं होते। भगवान का कहने का तात्पर्य यह है कि जो उच्च भगवान के पूर्ण शरणागत है, भगवान को पूरा अर्पण किया हुआ है, वो शुद्ध भक्त होते हैं, ऐसे लोग शुद्ध मार्ग पे चलने वाले शुद्ध भक्त रहते हैं, तो भगवान ऐसे लोगों का कुछ नहीं होते और वो इन ऐश्वर्यों से विचलित भी नहीं होते। जिस तरह हमारे अभी भारत का तो ये इस्कॉन में देख लो, ऐसे बहुत से हैं जो अरबपति करोड़पति, बहुत से ऐसे बड़े लोग हैं जिनके पास सब कुछ धन दौलत है, लेकिन फिर भी दिखने में लगते कैसे हैं, एकदम सादे सीधे साधे। उदाहरण पे तौर गए तो अमरीश महाराज, अमरीश प्रभु, फोर्ड कंपनी के जो पहली पृथ्वी पे जो कार आई थी फोर्ड, उसके पूरे मालिक हैं, लेकिन वो किस तरह रहते हैं, एकदम नम्र। इस तरह ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा कैसे रहती है कि उन्हें ऐश्वर्य कुछ लेते नहीं, क्योंकि वो सब कुछ जो भी उनके पास धन दौलत है वो भगवान को अर्पण कर देते हैं। जिस तरह बलि महाराज ने उनके पास जो कुछ था उन्होंने भगवान को अर्पण कर दिया, इसी तरह ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा रहती है। तो इसी तरह जब बलि महाराज से ये सब छीन लिया तो बलि महाराज विचलित नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो किसको क्या दे रहे हैं। भगवान जब स्वयं भगवान उनके पास तीन पग भूमि मांगने आए थे तो उस वक्त बलि महाराज ने सब कुछ न्योछावर कर दिया भगवान के ऊपर, तो विचलित नहीं हुए वो, तो इसलिए भगवान उन पर प्रसन्न हुए। तो भगवान कहते हैं कि भगवान ने अभी दूसरा कहा जाए कि क्या ऐश्वर्य देने के कारण बलि महाराज को सूतल लोक मिला, जो स्वर्ग से भी एकदम ऊंचा है, स्वर्ग से ऐश्वर्य से भी बहुत ऊंचा है। तो भगवान कहते हैं नहीं, मैंने उसको सूतल लोक इसलिए दिया क्योंकि उसकी सहन शक्ति थी, उसकी सहन शक्ति थी, उसका इतना अपमान होने के बाद भी, उसे कितना वचन लेकिन अपमान होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी वो अपने वचन पे अटल रहा, सत्य का पालन किया उसने, इसलिए ऐसी चीज भगवान ने उसको अर्पण की। तो हम ये देखते हैं कि बलि महाराज को नीचे के लोक में क्यों भेजा गया, जैसे कि हम देखते हैं कि जो अच्छा कार्य करता है सभी भाग उनको ऊपर के लोक भेजते, नीचे लोक में क्यों भेजा गया। तो एक तरह से देखा जाए कि जब किसी व्यक्ति को अभी कोई अपने बुरे कर्म करता है, लूटता है, खून करता है, या ऐसे कोई भी बुरे कार्य करता है, कर्म करते है दुनिया में, तो उसे नीचे के लोक में, ऐसे नर्क लोक में, ऐसे नीचे के लोक में भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है कि उसे वहां उस तरह का ट्रेनिंग मिले, ट्रेनिंग मिलने के बाद क्या होगा, वो आदत लगाई जाती है कि अगला योनि जो उसे मिलने वाली है उसमें वो अच्छे से भोग कर सके। अगर लोग उसको उस भेजेंगे नहीं, उस नर्क लोक में भेजेंगे नहीं और ऐसे दे देंगे तो तकलीफ पाएगा, इसीलिए भगवान ने बलि महाराज को नीचे सूतल लोक में क्यों दिया वो जगह, क्योंकि अगले मनवंतर में बलि महाराज इंद्र बनने वाले थे। तो इसलिए भगवान वामनदेव ने क्या किया, इंद्र का पद स्वर्ग में जो भोगना चाहते थे वही उधर ट्रेनिंग के रूप में उस सूतल लोक में भोगे, ताकि जब स्वर्ग में आए तो उनकी जो भी भोगने की इच्छा रहेगी तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि वो भगवान के अनिदिष्ट रह के वो भगवान की पूजा, उनकी कृपा पा सके। तो इसलिए भगवान ने उनको दिया। तो अभी यहां भगवान कहते हैं और आगे कि भगवान ने फिर बाद में ये सब वामन देव बलि महाराज को पहले क्रोध में ऐसे ऐसे सब कुछ किया, भगवान ने बलि महाराज के साथ ऐसा ब्रह्मा जी को बता रही, क्रोध में किया सब कुछ, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कि अभी भगवान एकदम प्रेम से बात कर रहे हैं, कहते हैं कि ये इंद्रसेन बलि महाराज, तो अभी कही इंद्रसेन क्यों कहा, प्रेम से कहा कि तुम उस सूतल लोक में उधर जाओ, उधर पे आधिपत्य गजाओ, मतलब उधर हासिल करो उस जगह को, और उधर तुम अपना इंद्र मतलब पूरा उसका ऐश्वर्य लो। तो इसलिए और ऐसा क्यों कहा, क्योंकि भगवान की कृपा थी उस पे। उधर जाके आधिपत्य करना मतलब पहले से एकदम बड़े बड़े असुर महासुर रहेंगे, उनसे करना मतलब लेना मतलब आसान बात नहीं है। तो इसलिए भगवान की कृपा होने के कारण भगवान ने कहा उस जगह पे जाओ और पूरा आधिपत्य करो। और दूसरी बात ये रहेगी कि भगवान उस लोक की सुतर लोक की रक्षा करेंगे, क्योंकि स्वयं उधर रहेंगे, और उधर रहने के बाद भगवान और सुदर्शन चक्र हमेशा उस लोक की रक्षा करेगा चारों तरफ। एक बार ऐसे था कि रावण आया था उधर सोना इकट्ठा करने के लिए, जब उसे लंका में सोना चाहिए था, सोने की लंका बनाते वक्त उसने जगह जगह से सोना इकट्ठा किया, तो रावण उधर आया था एक बार तो उधर आक्रमण करने के लिए। लेकिन वामन देव के अंगूठे का वो एकदम पॉइंट नोक है, उससे सिर्फ ठोकर ऐसे मारी तो रावण कहां जाके गिरा पता भी नहीं। तो इसी तरह भगवान वामन देव द्वारपाल के रूप में उस सूतर लोक की रक्षा करते हैं, ताकि कोई भी असुर आके उधर ना करे। अभी सूतर लोक में पांचवें स्कंद में इसमें थोड़ा वर्णन किया है, तो उसमें से थोड़ा सा मैं उसमें बारे में वर्णन करूंगा। पांचवें स्कंद में इसका वर्णन किया है। सो सूतर लोक अभी जैसे स्वर्ग में देखेंगे सूर्य चंद्र उसके बारे में बताया गया, तो लेकिन सूतर लोक में कैसे सूर्य चंद्र की रोशनी आती नहीं, किरणें आती नहीं उधर, तो उधर कैसे उधर रोशनी ये सब कैसे रहता है। हम ये सोचते हैं कि नर्क बोले नीचे के लोग बोले कि एकदम अंधेरा, सब एकदम मरेले टूटेले पड़ेले ऐसे रहते लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। उधर भी एकदम बड़े बड़े महल ऐश्वर्यशाली रहते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें क्या लगता है भौतिक दुनिया में जो बड़े बड़े महल रहे सब है यही सब इससे बड़ा है या स्वर्ग है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नीचे भी है ऐसे बड़े बड़े महल, ऐसे ऐश्वर्य है कि अगर जो लोग देखेंगे तो वो भी हरेंगे। और उसको बिल स्वर्ग क्यों कहा गया है, क्योंकि वो जो एरिया है जैसे बड़े बड़े गुफाएं रहेंगे तो उसके अंदर एक घर बांधा जाए तो महल बांधा जाए तो बिल में रहा, इसके लिए नीचे के लोग हैं बिल की तरह है, एक बड़े बड़े गुफाएं ऐसे बिल की तरह नीचे के लोग हैं। अभी भागवतम में देखेंगे तो ऐसे डायग्राम तो नहीं है, लेकिन उसमें बताया कि ऐसे पट्टी की तरह एक एक लोग एक पट्टी की तरह है, तो ऐसे बिल है एक एक में, उसके अंदर एक एक लोग एक एक महल है उसके अंदर, तो इस तरह। तो लेकिन दूसरी बात देखा जाए तो उधर रोशनी कहां से आती है, तो वहां के जो नाग लोक है उधर ऐसे असंख्य नाग है जिनके फने बहुत फने हैं, ऐसे एक दो फने नहीं है, यहां बीच में सुना था कि पांच फनों वाला नाग है तो सबको एकदम उत्साह हो पांच फनों वाला, उधर हजारों लाखों फनों वाले भी नाग हैं, उनके ऊपर जो मणियां हैं उस मणियों के कारण उस नीचे के लोगों में पूरी रोशनी फैलती है। अभी देखा जाए कि नीचे की इतनी आबादी बड़ी कैसे क्या, लेकिन उधर जाते कौन से लोग हैं, जो है पुण्यवान लोग हैं पुण्य आत्मा है, लेकिन भगवान की अधीनता नहीं स्वीकार करते, भगवान को मानते नहीं, इस एक तरह से कहे नास्तिक लोग। ऐसे लोग पुण्य कार्य करते हैं, सब कार्य करते हैं, बांधेंगे हॉस्पिटल बांधेंगे सब पुण्य कार्य करेंगे, ऐसे लोग उस जगह पे जाते हैं। ऐसे लोग उस जगह पे जाने के बाद क्या होता है, उन्हें वो जगह दी जाती है, पुण्य भोगने दिया जाता है। उधर भी स्वर्ग जैसे ही ऐश्वर्य है, स्वर्ग जैसे ऐश्वर्य वहां सब भी पुण्य भोग सकते हैं, लेकिन कैसे है कि कहते हैं ना कीचड़ में बैठ के खाना और अच्छी जगह पे खाने में फर्क रहता है। अच्छी जगह पे साफ सफेद जगह में बैठ के खाना मतलब स्वर्ग जैसा, लेकिन नीचे कीचड़ में बैठ के खाना मतलब अच्छा खाना वही खाना मतलब फर्क है ना। इसी तरह स्वर्ग और नर्क में इस भौतिक दुनिया में स्वर्ग नर्क में यही फर्क है। नीचे सूतलोक में मतलब नीचे के लोकों में लोग जब पुण्य कार्य करते हैं उनको भी भोगा जाता है, सब कुछ मिलता है, तो इस तरह। लेकिन अभी कोई कहा जाएगा तो उनका अंतिम समय कैसे आता है, तो उस वक्त सुदर्शन चक्र घूमते रहते उधर, सुदर्शन चक्र सीधा उनका मस्तक उड़ा देते, तो उस वक्त उनका अंत हो जाता है। अभी बोले अंत होने के बाद क्या होता है, उनका अंत होने के बाद उन्होंने जो कार्य किए रहता है जिस तरह कर्म किया, अभी जैसे हम इस भौतिक दुनिया में इस पृथ्वी लोक में हम जैसे कार्य करेंगे जैसे कर्म करेंगे उस तरह से हमें गति मिलती है, उसी तरह नीचे उन्होंने नीचे रहकर भोग उनकी पुण्य भोग करने के बाद जिस तरह का कार्य किया रहेगा उन्होंने अच्छा कार्य किया रहेगा। अभी अच्छा कार्य कैसे कर पाएंगे, क्योंकि नीचे लोग ऐसे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उनका उद्धार करने के लिए जो शुद्ध भक्त रहते हैं ना वो हमेशा बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनके हमेशा जीवों पे करुणा रहती है, इसलिए जब भी उनका उद्धार करने के लिए जैसे पांच पांडव गए थे, फिर अपने ये भी गए थे, तो जनक महाराज गए थे, तो पांच पांडव, कोई बोलते कि पांच पांडव ने भी नरक देखा। नरक देखने का अर्थ यह है कि ये नहीं कि उन्होंने नरक में जाके रहे, वो नरक के रास्ते से गुजरे थे। गुजरते वक्त जिन जीवों ने, जिन पतित आत्माओं ने उधर जो देखा उनको, उससे उनको शांति मिली। शांति मिलने के कारण ही उनसे उनके गति उनकी ऊपर हो, उस शांति मिलने के कारण वो किस तरह उसका फायदा उठाते हैं उसके ऊपर उनका निर्भर रहता है। अभी सोचिए, इधर मंदिर पूरा बना है, कितने लोग मंदिर में आते हैं, कितना लोग मंदिर का फायदा उठाते हैं, नहीं उठा पाते, सब कोई तो नहीं आते ना। तो इसी तरह नीचे जब शुद्ध भक्त जाते हैं तो उनका फायदा कितने लोग उठा पाते हैं, उधर सब कोई नहीं उठते, जो उठा पाते हैं तो ऊपर से ऊपर चले जाते हैं, वो लोक से निकल जाते हैं। और जैसे जनक महाराज आए थे, जनक महाराज जिस नरक लोक से गुजरे तो जनक महाराज पे उन जीवों पे इतनी करुणा आ गई कि उन्होंने वो छोड़ने को तैयार नहीं हुए। वो बोले मुझे यहां से नहीं जाना, क्योंकि इनकी ये स्थिति देखकर मुझे इन पर करुणा आ रही है। तो ऐसे जब शुद्ध भक्त जाते हैं वहां से, तो उस वक्त वो जो नीचे बद्ध जीव रहते हैं, जो तड़पते रहते हैं या जो ऐसे कर, उस वक्त अगर उनका फायदा लेते हैं या संग लेते हैं तो उस वक्त उनको गति से ऊपर आ जाते हैं। ये हो गया, ये थोड़े में थोड़ा नीचे के लोग ऐसा काफी है, लेकिन एक हिंट के तौर पर मैंने थोड़ा बता दिया। अभी देखेंगे जो ऊपर के लोग, स्वर्ग लोग। अभी कहते हैं स्वर्ग लोग, बोले मतलब एक ही स्वर्ग लोग, इंद्र का लोक, ऐसा नहीं है। स्वर्ग लोग में भी पार्टीशन है। अभी जो इंद्र, जो जिसे देवी देवता की पूजा करता है, वो कैसे उस लोक में वो जाता है, लेकिन देवी देवता की पूजा करता है, मतलब कैसे, धर्म के भगवान को अंश समझ, भगवान का अंश समझकर, भगवान विष्णु का अंश समझकर जो देवी देवता का पूजा करता है वो उस लोक में जाता है। लेकिन जो भगवान का, विष्णु का अंश नहीं समझता है, ये देवी देवता की या ऐसे लोगों की किसी की भी पूजा करता है, वो नीचे के लोक में जाते हैं। लेकिन जो अभी स्वर्ग लोग, जैसे कोई गणपति की पूजा करता है, कोई इंद्र की पूजा करता है, सूर्य देवी करता है, उस लोक में जाता है, वो एक लोक हो गया, वो एक स्वर्ग लोक हो गया। और दूसरा एक और एक स्वर्ग लोक है, जैसे उनके पुण्य जितने उन्होंने किए थे, वो पुण्य के हिसाब से उनको उस लोक में भेजा जाता है। अभी जैसे देखते हैं ब्रह्मांड में हम एक तारे देखते हैं, ये भी एक तरह का स्वर्ग लोक है। ये 800 मील का एक पूरा ऐसा जगह रहती है जिसमें हर चीज उसको उपलब्ध रहती है, लेकिन उसका पुण्य कम होने के कारण उसको वहां भेजा जाता है। वो अकेला रहता है उधर, और बाकी सब उसके जैसे मजे करने के लिए या ऐसे सब करने के लिए, इंद्र तृप्ति करने के लिए उधर उसको हर चीज सुविधा मिलती है। अभी 800 मील बोले तो सोचिए आप कितना बड़ा होगा। तो उधर ऐसे तो बोलते ना, तारा गिर गया, टूट गया ऊपर, टूटने के सब बोलते ना, लकी, मैंने तारा टूटता और गिरा देखा तो मेरी इच्छा पूरी होगी, ऐसा नहीं रहता, क्योंकि उस वक्त उसकी पुण्य खत्म हो जाते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरता है, ऐसा रहता। तो इधर लोग बोलते हैं मैंने तारा टूटा हुआ देखा, इसके कारण मैंने मेरी इच्छा व्यक्त की वो पूरी होगी, ऐसे मूर्ख लोग हैं, ऐसा नहीं होता वो। क्योंकि तारा टूटने के बाद मतलब वो जीव जो उसके पुण्य खत्म हो गए वो नीचे की तरफ गिरता है। और दूसरा बात यह है कि ये जो स्वर्ग लोक में जो रहते हैं, इनका कैसे, इनका नीचे किससे गिरते, इनका पतन कैसे होता है, क्योंकि जब ये स्वर्ग में होते हैं पहले उनको हार चढ़ाया जाता है। हार चढ़ाने के बाद वो एक ऐसा हार रहता है कि जब तक हार सूखेगा नहीं उसका पुण्य उतना भोग सकता है। जैसे हार सूखने लगता है समझना इसका टाइम खत्म, ये नीचे गिरने वाला है। तो नीचे गिरता है जब हार सूखता है तो ऑटोमेटिकली वो नीचे गिरता है, कोई धक्का नहीं मारता पीछे, तेरा टाइम खत्म हो गया अभी तू निकल, ऐसे नहीं करते वो। ऑटोमेटिकली हार सूखने, वो ऑटोमेटिकली नीचे गिरता है। और नीचे गिरने के बाद कुछ दूरी पे नीचे आखिरी समय आने के बाद उसको आखिरी के, जब उसके पुण्य खत्म होने के 10,000 साल बाकी रहते उस वक्त उन द्वीपों पे आता है वो, उधर आकर आखिरी के 10,000 साल वो पूरे बिताता है। वहां बीतने के बाद 10,000 उसके खत्म हो गए। तो देखिए अभी तीन तरह के स्वर्ग हम देखे, पहले एक तो इंद्रचंद्र वो, दूसरा तारे के रूप में, और तीसरा ये स्वर्ग एक है कि आखिरी के 10,000 साल उसके पुण्य पूरे खत्म होने के पहले। तो उस वक्त वो वहां पुण्य खत्म होने के बाद फिर ये जीव नीचे किस तरह आता है, एक मतलब वर्षा की, वर्षा से होकर नीचे, मतलब ये बहुत बड़ा साइकिल है, मैं पूरा साइकिल नहीं घुमाऊंगा क्योंकि टाइम साइकिल की तरह भाग रहा है। तो इसके लिए वो नीचे जब वर्षा के रूप में नीचे आता है तो कोई किजर गिरता है, बीज के रूप में गिरता है, तो उस वक्त जो जो जीव उसको खाता है, जैसे कोई मनुष्य हो या पशु हो, वो जब खाता है तो उसके वीर्य से ऐसे योनि में उसको गर्भ में स्थान मिलता है। तो ऐसे इस वक्त ऐसे जो ऊपर से नीचे गिरता है तो उसको मनुष्य शरीर ही मिलता है, ऐसे उच्च परिवार में या ऐसे स्थान में ही उसको जगह मिलती है। तो ऐसे कहा जाता है, और ऐसे कहा जाता है, लोग बोलेंगे अभी हम उधर जाएंगे आराम से मजे करेंगे, तो लेकिन एक तरह सोचना चाहिए कि पृथ्वी ऊपर लोक नहीं नीचे नहीं, पृथ्वी सबसे उत्तम लोक है। अभी लोग कुछ सोच रहे, मुझे बोलते रहेंगे कैसे व्यक्ति पृथ्वी लोक सबसे उत्तम बोल रहे हैं, सबसे अच्छा, इधर इतने कोरोना वायरस इतना सब तकलीफ हो रही है। लेकिन थोड़ा सा बुद्धि लगाकर सोचेंगे कि पृथ्वी लोक ही ऐसा लोक है जहां से हम भगवद्धाम जा सकते हैं। देवी देवता भी पूजा करते हैं कि हमें पृथ्वी लोक में जन्म लेना है, तो क्योंकि पृथ्वी लोक में ऐसी हर चीजें हैं कि हम नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, और उसके ऊपर भी गोलोक वृंदावन भी जा सकते हैं। तो इसी तरह अगर हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिलने के बाद तो हम ऐसा उसका फायदा उठाना चाहिए, हमें इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए अभी। और दूसरा एक है कि सूतल लोक एक स्पेशल, जब बलि महाराज ने उसका अध्यात्पत्य कर लिया तो उस वक्त उसका महल विल आर्किटेक्ट किसने किया, क्योंकि नीचे के लोगों का आर्किटेक्ट कौन है, शिल्पकारी मैदानव, और ऊपर का आर्किटेक्ट कौन है, विश्वकर्मा। तो स्पेशली भगवान के कहने पर विश्वकर्मा नीचे आए थे, तो उधर के बलि महाराज के जो सूतल के उसकी आर्किटेक्ट बलि महाराज ने, ये विश्वकर्मा ने किया था। तो किया ऐसा, ये होने के बाद तो जो इस तरह जीव आता है तो भोगने लगता है। तो अभी एक ऐसे करेंगे कि कोई सोचेगा कि बलि महाराज ने उसने सर्व अर्पण किया, सहनशीलता के कारण उनको ये मिला, लोक मिला। लेकिन आगे फिफ्थ कैंटो में बताया गया है कि ऐसा हमें सोचना नहीं चाहिए कि बलि महाराज को उनके सहनशीलता के कारण या उसके कारण मिला, क्योंकि बलि महाराज को ऐश्वर्य दान प्राप्त हुआ तो उनके कोई क्योंकि शुद्ध जो एकदम प्रेम भाव से, एकदम प्रेमता से आकर अगर भक्त कर भक्ति करना चाहता है तो भगवान उसको ऐश्वर्य देते हैं। शुद्ध भक्त बनना चाहता है, प्रेममय भक्ति करता है, सेवा करता है, तो भगवान उसको ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। कहते हैं नहीं कि भगवान को पता रहता है किस व्यक्ति को क्या सेवा देना चाहिए, क्या ऐश्वर्य देना चाहिए, क्या ऐश्वर्य नहीं देना चाहिए। इसी तरह बलि महाराज ने जब सब कुछ अर्पण कर दिया तो भगवान के अधीन होते हो गए, उन्होंने भगवान से प्रेममय भक्ति करने के सोचा, विचार किया उन्होंने, तो इसलिए भगवान ने उसको पूरा ऐश्वर्य दे, उनको पूरा ऐश्वर्य दे दिया। तो इसलिए ये हमें एक भौतिक ऐश्वर्य दिया। किंतु हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए, गलती से भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम प्रेममय सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान हमको ऐश्वर्य दे देंगे, ये बिल्कुल मत सोचिए। ये सबसे बड़ी गलती है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम ये सब करेंगे तो भगवान हमको दे देंगे। भगवान देंगे लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं देंगे। जो शुद्ध भक्ति पाना चाहता है तो उसे इसलिए पहले मैंने कहा ना कि जिनके पास ऐश्वर्य सुंदरता सब कुछ है, उदाहरण भी दिया था, तो क्योंकि वो विचलित नहीं होता, क्योंकि उसके भगवान के वो ऐश्वर्य मिल जाता है भगवान का, उनका प्रेम मिल जाता है भगवान का, तो ये चीज सब उन्हें तुच्छ लगती है। इसलिए भगवान हमें ये नहीं सोचा कि चाहिए कि हम भक्ति में आए हैं तो हमें ये ऐसे सब ऐश्वर्य मिल जाएगा, नहीं, जैसे बलि महाराज को मिला ऐसे हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान हमें भक्ति देना चाहते, शुद्ध भक्ति। अगर वो जीव इच्छा करे शुद्ध भक्ति की तो भगवान उसे। इसी तरह बलि महाराज ने उनकी शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, तो भगवान वामन देव ने पहले ही पहचान लिया था कि ये पूरी शुद्ध भक्ति करना चाहता है, प्रेम से सब करना चाहता है, क्योंकि व्यक्ति जब पूरा समर्पण करता है ना तो उस वक्त भगवान उसकी मनोस्थिति जान लेते हैं कि ये कौन से स्तर पर आकर समर्पण कर रहा है, समर्पण कर रहा है, तो उसी वक्त उसके हिसाब से भगवान उसको उस स्तर पे, उस स्थिति में डालते हैं। जैसे बलि महाराज ने पूरा ऐश्वर्य दे दिया, उन्हें ऐश्वर्य दे दिया क्योंकि अगले इसमें इंद्र बनने वाले थे, तो हमें भक्ति करते हुए भौतिक इच्छा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान को पता है इस जीव को क्या चाहिए क्या नहीं। जैसे एक माता पिता को पता है कि वो अपने बच्चे के लिए क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है, उसी हिसाब से वो देते हैं। तो इसी तरह भगवान को पता है कि इस जीव ये इससे अगर इसे ऐश्वर्य दिया तो भक्ति से हट तो नहीं जाएगा, तो पूरा भक्ति करेगा ना, तभी वो देते हैं। तो इसी तरह तो इसलिए हमें भक्ति करते समय हमें ये सोचना चाहिए कि हमें भगवान की प्रेममयी सेवा ही चाहिए, और किसी से भी स्थिति में अगर भक्त रहता है, अगर प्रेमय स्थिति रहता है, तो अगर उसको ऐश्वर्य भी मिल जाता है तो विचलित नहीं होता। तो ये, और प्रभुपाद आगे ये भी कहते हैं कि ऐसे जैसे प्रभुपाद ने कहा कि उच्च प्लांट में लोग, साइंटिस्ट लोग या उच्च प्लांट में जाने की कोशिश करते, जैसे अपोलो भेजा, अपोलो 11 गया था, चंद्रयान में गया था, तो चंद्र सूर्य से भी काफी दूर है, अगर 1 मिलीमीटर थोड़ा भी अगर धरती अपनी जगह से हट जाए ना तो भस्म हो जाएगी धरती, इतनी शक्ति है सूर्य रेज की। तो ये लोग यान लेके ऊपर उड़ने लगे, तो उससे क्या होगा कि ऐसा गलत है सब। जब ये टीवी पर दिखाया जा रहा था उस वक्त प्रभुपाद अकेले थे जो हंस रहे थे ये सब देख के, बोले ये मूर्ख लोग समझ रहे कि ये लोग ऊपर गए हैं, सब उधर जाके देखे। अभी सोचिए ऊपर जाने के बाद वो पत्थर बालू देख लेने के थे, कितने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के बाद वो कहां भी मिल सकते हैं। तो प्रभुपाद ये कहने का मतलब, प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि लोग जाते हैं उच्च ग्रहों में रॉकेट लेकर, लेकिन एक एटमॉस्फेयर रहता है, एक स्तर रहता है कि पृथ्वी का, वहां तक ही कुछ लिमिट रहती है, वहां तक ही रॉकेट जाता है, आगे जाकर नहीं जा सकता, आगे जाएगा तो पूरा फिनिश हो जाएगा, पूरा राख हो जाएगा उसका। इसी तरह प्रभुपाद के कहने के पर उसके ऊपर प्रभुपाद ने ये जब ऐसा कहा तो काफी लोग इस्कॉन छोड़ के भी चले गए, क्यों, कहते सब हमें सामने टीवी पे दिख रहा है तो हम कैसे देखकर ये कह सकते हैं कि ये झूठ चल रहा है, क्योंकि सामने आंखों के सामने दिख रहा है। प्रभुपाद ने कहा ऐसा नहीं है, तो इसके कारण काफी लोगों ने छोड़ भी दिया था इस्कॉन, लेकिन जब सत्य लोगों को सत्य पता लगने लगा तो उस वक्त प्रभुपाद को वो कहने लगे, समझने लगे कि हाँ ये जो व्यक्ति कर रहा है वो सत्य कर रहा है। तो इसी तरह आज के इस श्लोक में जो छोटे से इसमें हमने किया है, बताया है, थोड़े टच करके श्लोक को मैं जो बताने की कोशिश किया है, तो बलि महाराज कैसे देखते हैं, कहा जाते हैं कि भागवत में जो दिया है ना वो पूरा नहीं दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि जितना खाएंगे उतना ही हम डाइजेस्ट कर सकते, उतना ही भागवतम में दिया है, अगर ज्यादा अगर देने गए तो पहली हमारी बुद्धि कम, समझ में नहीं आता, बताया सुनने में नहीं आता या ठीक से समझ नहीं पाता। अगर पूरा भागवतम का बताया दिया एक बार व्यासदेव ने दे दिया तो उसका अर्थ गलत अर्थ निकालेंगे। तो इसके लिए अगर हम और थोड़ा भागवत को अच्छे से डीपली से स्टडी करेंगे और फिर बाद में भक्तों के बीच में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो अभी हमें समझ सकता है। जैसे अलग अलग दूसरे स्कंद के बारे में पूरा बताया, 10 अध्याय पूरे, तो लोगों एकदम थोड़ा सा वो जो 100% में कहा जाए तो 15-20% ही बताया वो दूसरे स्कंद का, पूरे कैसे प्रकृति चलती है पूरा। अगर पूरा बताने तो इतने पढ़ के ही हमारा सर चकराने लगता है, तो पूरा अगर मालूम पड़ गया तो हमें क्या होगा स्थिति। इसी तरह भागवत में ऐसे बलि महाराज के बारे में बहुत डिटेल में है, अलग अलग खंडों में ही है, लेकिन व्यासदेव में हमें उतना ही दिया है, प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में उतना ही बताया है कि जितने हमें डाइजेस्ट हो सके। से इसलिए भागवत को हम पढ़ते हुए उसका अनुसरण करते हुए हमें हमारा जीवन भक्तिमय जीवन आगे बढ़ता रहना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी को ये प्रश्न, कुछ टीका टिप्पणी कुछ हो तो प्रश्न कर सकते हैं या कुछ बता सकते हैं। अभी अभी देखिए, जब ये भक्ति वैभव चालू था ना उस वक्त जो, हाँ बोलिए, जैसे प्रभु जी ने पूछा है कि भक्त, जैसे मैंने अभी कहा कि भागवत में पूरा दिया नहीं है, ऐसा किधर बताया, कैसे है, लेकिन अभी देखते हैं भक्ति वैभव क्लासेस चालू थे, एक बॉम्बे से प्रभु जी आए थे, उन्होंने पूरा नरक लोक का वर्णन थोड़े में किया, बाकी पूरा वर्णन किया, वो भागवत में है क्या पूरा, थोड़ा थोड़ा बताया ना, पांचों स्कंद में बताया, दूसरे स्कंद में थोड़ा थोड़ा बताया, लेकिन प्रभु जब भी प्रभु जी ने वो फिर वो जम्बूद्वीप के बारे में वर्णन किया, वो लोकों के बारे में वर्णन किया, फिर बाद में तारा स्वर्ग कैसे है, इंद्र चक्र कैसे घूमता है, वो सब भागवत में नहीं दिया गया, डिटेल में नहीं बताया गया। उसी तरह ये चीज भागवत में उतना ही बताया गया है कि अगर डिटेल चाहिए तो डिटेल मिल सकती है, लेकिन उससे क्या होगा, ज्ञान मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए प्रभुपाद ने हमें उतना ही दिया है जितना हम समझ सके। तो इनका इनका प्रश्न ये है कि भगवान कहते हैं कि सहनशीलता के कारण, इनको माइक दो ना, थोड़ा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। फिर से रिपीट कीजिए आपका प्रश्न। अभी हाँ, अभी एक तरह से देखा जाए कि अभी बहुत से सहनशील लोग के दुनिया में घूमते हैं, क्या सबको ऐसे ऐश्वर्य नहीं देते भगवान? उनको देने का कारण यह है कि हम बलि महाराज की अगर ठीक से अगर स्टडी करेंगे उसको, तो बलि महाराज ने किस भावना में उन्होंने सब स्वीकार किया अपने ऊपर। अभी सोचिए, आपके पास सब ऐश्वर्य है, सब कुछ है, तीनों लोग है आपके पास, आप उन तीनों लोग भगवान आपसे छीन लेते हैं, एक तरह से भगवान ने छीन लिया था, ले लिया, और उसके ऊपर भी आपको सांप से बांधा गया। बांधने के बाद भी नम्र रहे, तो नम्र रहने के कारण फिर वो अपने आप को भी अर्पण कर दिया। ये एक सहनशीलता की कोटी रहती है, स्टेप रहती है, स्तर रहता है, उतनी सहनशीलता किसके पास नहीं रहती। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अगले मन्वंतर में इंद्र बनने वाले थे, जैसे मैंने कहा कि ट्रेनिंग दी जाती है। तो तीसरी बात यह है कि वो प्रहलाद महाराज के वंशज में थे, तो भगवान के एक तरह से देखा जाए ये कृपा है भगवान की। भगवान की कृपा कैसे किसको मिल सकती है, वो एक कारण है सहनशीलता, क्योंकि उन्होंने भगवान को पूरा अपने आप को समर्पण किया था और वो शुद्ध भक्ति करना चाहते थे उनकी, भगवान की। तो इसी तरह मैंने कहा ना पहले कि भगवान ये देखते हैं कि किस व्यक्ति को क्या देना चाहिए। तो अभी सहनशीलता भी सीसी पढ़ेंगे, तो ऐसे ऐसे उदाहरण है, तो भगवान ने उनको क्या क्या दिया। भगवान ने बोला ना महाप्रकाश लीला में, आप मांगो जो मांगना चाहते सबको दे, लेकिन नहीं दिया। लेकिन ये बलि महाराज, इनका स्तर ही कुछ अलग था, और प्रहलाद महाराज के वंशज होने के कारण और आगे इंद्र का पद मिलने के कारण, तो भगवान ने कहा कि अभी तुम सूतर लोक में जाके भोगो इसको। ये एक कारण था कि सहनशीलता का, क्योंकि वो भक्त बनना चाहते थे, और जो भक्त शुद्ध भक्ति चाहता है तो उसको मिले ना मिले कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये कारण। उसकी इच्छा थी ना, भगवान ये भी देखते ना, इच्छा देखते ना, उसने 100 यज्ञ क्यों किए थे, बलि महाराज ने 100 यज्ञ क्यों किए थे, ताकि उसे इंद्रपद चाहिए था। भगवान ये भी देखते हैं कि जैसे ध्रुव महाराज स्टार्टिंग में आए थे, तो उन्होंने ध्रुव महाराज ने क्या मांगा था पहले, मुझे हाँ उनकी इच्छा थी प्रभु, उनकी इच्छा थी इंद्र बनने की। ये कैसे हुआ, जब वो भक्त नहीं थे उस वक्त ये स्थिति हुई, उस वक्त उनको ऐश्वर्य सब चाहिए था, लेकिन जैसे वो भगवान को समर्पित हो गए, अपने आप को नहीं चाहिए, उस वक्त उनकी शुद्ध भक्ति करने की इच्छा हुई। उस वक्त भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा थी ना कि इंद्र बनना है, ठीक है अभी तुम सूतलोक में ये भोगो सब कुछ, इंद्र से भी मतलब स्वर्ग से भी ऊंचा ऐश्वर्य दिया, उनकी इच्छा थी इसके लिए दिया। भगवान कभी भी इच्छा, व्यक्ति जीव की इच्छा को दबाते नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो प्रेम भक्ति चाहते थे, मैंने कहा ना प्रभु जी, वो प्रेम भक्ति चाहते थे, प्रेम भक्ति पाना चाहते थे, इसलिए कि वो पा लिया नहीं उन्होंने, वो पाना चाहते थे, इसलिए तो नीचे भेजा, सीधा वैकुंठ को भी भेज सकते थे। नहीं नहीं नहीं, पूरा प्रेम सत्र नहीं आए थे, संतुष्ट प्रभु। हरे कृष्ण।